भगवान का भजन करने के लिए, यह काम जैसे हो इसके लिए चेष्टा करेंगे तो ये प्रभुपाद जी और गुरु परंपराचारी हमारे ऊपर में प्रसन्न हो। प्रभुपाद ने अंत तक यही कहा, हम काठ और पत्थर के मिस्त्री नहीं है, ये है काठ और पत्थर है, हम भगवान के कथाओं के मात्र प्यून हैं, ऐसे समझो हम लोग, हम लोग इसी के लिए आए हैं, हम चिरस्थाई व्यवस्था कर रहे हैं। प्रभुपाद ने अपने समय में कोई भी ऐसा कोई मंदिर नहीं स्थाई बनाया, किराए के ऊपर में सब मठ मंदिर लेकर के बनाया, धीरे धीरे ये पक्का होता चला जा रहा है, धीरे 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 हम लोग दूसरे रूप में चले जा रहे हैं। हम लोग उनके मूल लाइन से कभी भी डिविशिएट न हो, ये सब समय ठीक रखना चाहिए। प्रभुपाद जी का आचार और विचार लेकर हम उनके दो एक उपदेशों को यहाँ पर है, उसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, आप लोग समझेंगे, उसको पालन करने की चेष्टा करें। ये सब भक्ति राज्य की भित्ति है, भित्ति ये नहीं रहने से जो ऊपर वाली जो कथाएं हैं वो गिर जाएंगी, ये सब भित्तियां हैं। ये जैसे एक उनका कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर का, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय गरी, जामुना जीवन खेली पराय मानस चंद्र चकोर गाओ नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राघव। अब मतलब इसका क्या मानेंगे, जामुना जीवन माने क्या, केली पराय मानस चंद्र क्या इसका अर्थ होगा बतलाओ, कोई एम ए पी एच डी आकर के इसकी व्याख्या कर दे तो, हम लोग तो रोज ही गाते हैं, गाने से कुछ ना कुछ लाभ होगा, किंतु यदि इसका भाव समझ में आए और तब इसको गाए ना, तब देखो जी कितना भाव है, कोई चीज इसमें क्या बाकी रह गया, रासलीला बाकी रह गई, न भ्रमर गीता रह गई, न वेणु गीत रह गया, न क्या बाकी रह गया कि गोविंद लीलामृत बाकी रह गया, सब कुछ इसमें आ गया। इसके और पहले वाले भी जितने भी इसकी लाइनें हैं सब लाइनों में अथाह समस्त तत्व और रस भरा पड़ा है इन सब। हैं गोपांगनागन फुलसर जोजक काम, बताओ तो फुलसर जोजक काम, फुलसर जोजक काम माने क्या, अनंग वो यहाँ पर फुलसर जोजक काम, वो मंत्र ही पूरा यहाँ आ गया, काम गायत्री यहाँ आ गई, फुलसर जोजक काम कृष्ण के फूल स्वर जोजक, स्वर स्वर माने बाण, बाण किस पर योजना किया जाता है, धनुष पर, बिना धनुष के बाण रहेगा, तो ये धनुष के ऊपर में बाण संयोग कर रहे हैं, कैसा बाण, काम, काम है ना, वो काम का बाण धनुष पर ये समझो, कितने बाण हैं, पांच, बतलाओ तो इसमें क्या बाकी रह गया, कुछ बाकी है, यदि समझने वाला हो तो इसमें कौन सा ऐसा बाकी है जो इसमें रस रह गया, किंतु समझे तब तो, इसी को किसी के चित्त में एकदम उतार देने का नाम, और ये सब करने का काम यही गुरु परंपरा का है, वैष्णव का काम, रसज्ञों का काम, यही शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का कार्य। एक एक लाइन पर भी विचार करेंगे तो एक लाइन पर ही हम समझते कितने दिन भाषण और वक्तृता, और उसका हृदय कितना आनंदित हो जाएगा, सरस हो जाएगा, ये सब देखेंगे, एक एक शब्द में ही कितने कितने भाव भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भरे हैं, या नरोत्तम ठाकुर जो हैं वो भरे हैं। इस तरह से आचार्यों को समझने के लिए वो सब बुद्धि और ये भावना चाहिए, तब हम लोग कहीं उनको समझ सकते हैं। अन्यथा गैया गेले जिसका फटा उसका फटा। इसलिए इन सब को समझने के लिए भाई उनके पदों को और प्रभुपाद के वैशिष्ट को समझने के लिए ऐसे भाव होना चाहिए हृदय में, तब कहीं जा करके हम इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कहते हैं प्रभुपाद जी जाने के पहले उन्होंने कुछ उपदेशों को अपने शिष्य वर्गों के अनुगामियों के बीच में उन्होंने कहा था। कहाँ कहा था? कलकत्ते में स्थान स्थान पर उन्होंने कहा था। महाप्रभु के शिक्षाष्टक में जो लिखित परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन गौड़ीय मठ का यही उपास्य है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण का नाम कीर्तन ही हम लोगों का उपास्य है। साधन भाव और प्रेम तीन चीजें हैं। प्रेम के प्राथमिक साधन का नाम साधन है, प्रेम के माध्यमिक साधन का नाम भाव, और भाव के द्वारा जो साध्य है वो है प्रेम। साधन किसको कहते हैं? जिसके द्वारा भाव प्रकटित हो। जिस साधन के द्वारा भाव नहीं उत्पन्न हो, भाव कैसा? शुद्ध सत्व वाला भाव, वो पैदा नहीं हो तो वो साधन ही नहीं है। अभी हम लोगों का विचार करके देखो, जो हम लोग भाव को प्रकट करने के लिए साधन कर रहे हैं या नहीं, उसको लक्ष्य करके होता है कि नहीं? आखिर साधन करते हैं तो साधन कर रहे हैं, किस लिए साधन करते हैं? कोई उद्देश्य अभी नहीं। अधिकांश लोगों में वो भाव पैदा हो जाए, जैसे एक आदमी डीएसएलआर घिस रहा है, उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य हो कि इसमें से स्फुलिंग निकल आए, आग निकल आए, तो वैसे ही घिसेगा। और यदि डीएसएलआर घिसना ही हमारा साधन है, यही साध्य है, तो भिजी हुई डीएसएलआर को दिन भर करता रहेगा, वो टूट जाएगा, मसाला गिर जाएगा, झड़ जाएगा, फिर एक दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, और इसी को हम साधन समझेंगे। हम लोगों का साधन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? भिजी हुई डीएसएलआर और उसकी काठियां ऐसी भिजी हुई हैं, हम कर तो रहे हैं, रगड़ तो रहे हैं, किंतु कभी ये चेष्टा करते हैं कि इसमें से झट आग निकल आए? यदि हमारा साधन होगा वैसा तो उसको ले देखेंगे, डीएसएलआर भिजी है तो क्या करेंगे? आग पर सेक लेंगे, जब ठीक हो जाएगी तो थोड़ा सा ऐसा करेंगे, देखेंगे जब फिर नहीं जली तो दूसरी डीएसएलआर लाओ, इससे काम नहीं होगा, दूसरी डीएसएलआर बदल दी ना, और फिर जलाया थोड़ा सा तो देखो खर प्रकाश आया। नहीं, गर्माहट आई कि नहीं ये तो हम तो समझेंगे ना, आग लग रही है, जल रही है कि नहीं ये तो मालूम होगा ना हमें। प्रतिग्रास के साथ में भक्ति के ये मालूम होगा, खुदा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि, ये तीनों चीजें होगी ने? और यदि नहीं है तो फिर वो साधन भी नहीं है और साधक भी नहीं है। तो कहीं हम लोगों का साधन ऐसा तो नहीं हो रहा है? हम जो कुछ करते हैं इस दृष्टि से करो, भाव इसके द्वारा हमारा पैदा होगा कि नहीं कृष्ण के प्रति, हो रहा है कि नहीं कुछ? डीएसएलआर अंत तक गर्म हो रही है कि नहीं ये देखो, कहीं इसके द्वारा प्रतिष्ठा और दूसरी चीजें रुपये पैसे तो नहीं उसके द्वारा निकल रहे हैं, उस साधन के द्वारा। यदि सचमुच में उस तरफ में जा रहे हैं तो हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए खूब अच्छी तरह से समझो, जिस कीर्तन का उद्देश्य है वैसा भाव उत्पन्न। पहले देखो उस कीर्तन के द्वारा हम कीर्तन कर रहे हैं, चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं ना? ये शिक्षास्तक में पहला श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निवापन श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावत जीवन आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इस संकीर्तन हम जो कर रहे हैं चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं, कहे गुरु जी समझेंगे हम कैसे समझेंगे कैसे समझेंगे? अरे हम तो ये समझेंगे ना कि जगत के प्रति, विषयों के प्रति, अर्थ के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति हमारी अभी हमारा चित्त जा रहा है कि नहीं, ये तो समझ लेंगे ना। भोगों के प्रति जा रहा है कि नहीं, भोगों को विष समझ रहे हैं ना कुछ अपने लिए अनुकूल समझ रहे हैं? भोग है विष ना। जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, हरिनाम निर्जन में कर रहे, परम सुंदरी ज्योति वहां आई, कहे प्रभु जी आपको रसोई नहीं बनाना पड़ेगा, आपको पानी नहीं भरना पड़ेगा, आपकी तुलसी की सेवा मैं कर दूंगी, आप दिन भर हरिनाम करिए, सब प्रकार की सेवाएं हम कर दूंगी, थक जाएंगे तो पैर भी दबा दूंगी, सब काम कर। अच्छा हरिदास ठाकुर जी ग्रहण कर लेते, लिए? इसलिए ऐसे ही प्रकार के जितने विषय के भोग हैं वो एक एक कामनी समझो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, केवल पुरुष के लिए ही नहीं कह रहा, सबके लिए। उसको यदि हम लोग विष समझे तो भाई ये भजन के लिए अनुकूल होगा, और नहीं अनुकूल समझ लिया इन्हीं चीजों को, सुंदर सुंदर चीजों को, अच्छी भोगों को, सुंदर पलंग को, तो क्या होगा? ये प्रतिकूल है, प्रतिकूल को ही अनुकूल समझना ये चित्त अशुद्धि है। चेतो दर्पण मार्जनम ये नहीं हुआ है? उसमें चित्त अपना प्रतिबिंबित जो अपना स्वरूप है उसमें नहीं होगा, दर्पण को निर्मल होना चाहिए, उस पर धूल इत्यादि नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए जिसमें अपना स्वरूप प्रतिबिंबित हो सके। अपना स्वरूप और पर स्वरूप, माया का स्वरूप, सभी जो जो स्वरूप है उस दर्पण में एकदम प्रतिबिंब जिसमें हम देख सके, अपनी भूल दोष त्रुटि सब देख पड़े। जिसको अपना दोष नहीं दिखता, दूसरों का ही दोष दिखता है केवल, वो तो परमबद्ध है, वो दुर्भागा है। दूसरों का गुण ही जिनको गुण दिखता है वो ठीक है। इसलिए हमारे चित्त के ऊपर में जो मैला पड़ा है, ये मैला है सबसे पहला देह में आत्मबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि होना ही चित्त पर ये सब मैला पड़ा। हम यह शरीर नहीं है, हम क्या हैं? नित्य कृष्ण का दास है, किंतु मैला पड़ जाने से अभी यही शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये चित्त का सबसे बड़ा भारी मैला। इसलिए इस शरीर को ही सुखी करने की चेष्टा का होना ये भी मैला है। बहुत से अनर्थ है, सर्व भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल्य, अपराध, और इसके अतिरिक्त माधुर्य कादंबनी में वर्णन किए गए उत्साहमय घन तरला, दृढ़ विकल्पा, विषय संग्रह, तरंग रंगिनी, नियम क्षमा, और इसके बाद में पूर्व कृत सुकृति उत्थ अपराध, दुष्कृति उत्थ अपराध, भक्ति उत्थ अपराध, अपराध, ये सब दूर हो जाएंगे तब उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे। किंतु देखो अभी स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, प्रतिबिंब में देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं, अभी स्वरूप को अभी ठीक से नहीं देख रहे हैं, अभी वो दर्पण है, माया है अभी, किंतु विषय छाड़िया कबे शुद्ध भेम मन, कबे हामी हे रवि अभी उस मन से देख रहे हैं, किंतु चित्त है उस समय। चित्त जब टूट जाएगा, हट जाएगा, शुद्ध एकदम आत्मा हो जाएगी, उसके द्वारा जो अपना स्वरूप देखेंगे, अपने आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे, वो शुद्ध चीज है। किंतु अभी तक कभी कभी आएगा, अभी तो पहले चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम, तब ये दशा आएगी, जिसको कारण स्वरूप की अनुभूति। इसलिए पहले इन सब अवस्थाओं को पार कर करके जब नाम करेंगे तब वो हमारा नाम, ऐसा एक कृष्ण नाम ही हमको भव सागर से तरने के लिए, बाकी को हम लोग पीछे अब विचार करेंगे, आज यही तक रहे। छह बज गया तो ठीक है, अभी तो अंधकार है, अंधकार हो गया है ना, ना अंधकार है, सब लोग गिर पड़ेंगे, किसी को बैल गाय मार देगी, कुछ कुछ हो जाएगा, बहुत स्कीम है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये अभी चित्त दर्पण मार्जन हुआ, अर्थात संसार की कोई भी आसक्ति, अनर्थ और अपराध नहीं रह जाएगा, तब उस दर्पण में, चित्त रूपी दर्पण में प्रभु का दास्य प्रतिबिंबित होगा। ये पहली ही चीज इतनी कठिन है, अंडरस्टैंड समथिंग। चेतो दर्पण मार्जन, अच्छा, भव महादावाग्नि, जब चित्त दर्पण मार्जित होगा, जब चित्त शुद्ध देखेंगे और स्वरूप को दे मैं कृष्ण दास हूं, और जब कहीं भी आसक्ति नहीं रह जाएगी, अनर्थ नहीं रह जाएगा, अनर्थ की आग लग रही है, अभी अनर्थ की आग लग रही है, मैं ये शरीर हूं, शरीर के कष्ट को, दुख को हम अपना दुख मानते, संसार के संबंधियों को हम अपना संबंधी मानते हैं, संसारिक लाभों को लाभ और हानि को हानि समझते, यही संसार में दवालन में जलना है, इसीलिए जन्म मरण हो रहा है, बार बार जन्म लेते हैं, मरण करते हैं। जब ये चीज साफ हो जाएगी मैल, तब क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जन के बाद ही भव महादावाग्नि, भाव महादावाग्नि जो है वो निर्वापित हो जाएगी। अब हम साधन के क्रम में आ जाएंगे, अब पहला जो दुख क्लेश अग्नि जो भक्ति है यहाँ पर, अब ये पहला उसका पत्ता अभी निकला, कैसे निकलेगा, उत्तमा भक्ति का, जब हम कौन सा उत्तमा भक्ति, अन्नाभिलाषिता वाली भक्ति का जब हम साधन ठीक ठीक करने की चेष्टा करेंगे, उस समय में पहला पत्ता निकलेगा क्लेश अग्नि, जितने प्रकार के क्लेश हैं सब दूर हो जाएंगे, एक बार में दूर नहीं होंगे, धीरे 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 धीरे, श्रद्धा होने पर अभी पूरी फौज है अनर्थों की, निष्ठा होने में अधिकांश सब ये दुख दूर हो गया, निष्ठा से जहां रुचि की तरफ गई, आसक्ति जब हुई तो प्राय की माने सब प्राय अनर्थ अब दूर हो गए हैं, स्थूल अनर्थ नहीं है, किंतु अभी उनका मूल है। जैसे हम यहां पर अभी मुंडन करा लिया, सफा चट हो गए ना, यहां वहां सबका केस चला गया, किंतु एक भी केस गया कहाँ है, वो मूल में है ना, जड़ में, अब वो जहां दो दिन हुआ निकलने आ गए, 8-10 दिन में फिर भर जाएंगे, बांस या दुर्वा घास, दुर्ब की घास ऊपर से छीन दो, मालूम हुआ जब मैदान में कोई घास नहीं, एकदम भंडा है, अब जहां दो दिन के बाद, आज ये वृष्टि पड़ी है, कल जाना परसों मैदान में देखना चाहिए, सब हरी हरी घासों से एकदम भर गया, कहां से घास आई, उसका मूल उसमें है। उसी तरह से ये आसक्ति में, ये रूट में रह जाती है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता, कि उपयुक्त क्षेत्र मिल गया, पानी और भूमि मिल गई तो फिर वो पनप जाएंगी, पनप। यदि वहां से भाव हो जाता है तब तो सदा के लिए वो मिट गई, और नहीं यदि कुसंग हुआ विषय लोगों का संग तब फिर वो पनप करके चारों तरफ में बढ़ करके छा जाएंगी और भक्ति को ही लोप कर देंगे। इसलिए भावावस्था तक भी लोग जा करके यदि कुसंग में आए और अपराध किसी प्रकार का वैष्णव अपराध हो गया तो वहां से भी लौट आते हैं, संभावना रहती है वहां से लौट। इसलिए अपराध से, सेवा अपराध से, नमापराध से, विशेष करके नमापराध से, वैष्णव अपराध से, गुरु अपराध से बच करके चलने की चेष्टा करनी चाहिए, किंतु होता नहीं है। हंसी में, दिलगी में, किसी न किसी रूप में हम लोग कुछ कर डालते हैं, किंतु धीरे धीरे इसको चलना चाहिए, हटाना चाहिए। तब भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। अब यह दूसरी पत्ती अब आरंभ हो रही, दूसरी शुभदा। जितने प्रकार के शुभ हैं, क्या शुभ है जगत में? धन का होना, अच्छे संतान का होना, कोई पद गंभीर मिल जाना, प्रतिष्ठा खूब संसार में हो जाना, समस्त विद्याएं प्राप्त करना, शरीर वज्र के समान सुदृढ़ और अत्यंत सुंदर रहे, बुढ़ापा नहीं आना, यही तो सब शुभ है जागतिक, ये सब शुभ है। किंतु ये सब शुभ नहीं है। शुभ क्या है? भगवान के नाम के प्रति रुचि होना, लीला कथाओं के प्रति रुचि होना, भगवान के भजन करने के जो अंग हैं साधन के उनमें उतने उत्कंठा जगना, कैसे उनको आचरण में लाएं, ये सब उत्कंठा यदि हो तो ये इसे शुभ। अब ये हुआ, ये शुभ जो है वो कुमुदिनी का फूल है ना, कुमुदिनी का फूल है। यदि चंद्र की किरणें उस पर पड़ेंगी तो कुमुदिनी खिल जाएगी, एकदम कैसी होती है, शुभ्र, कोई दाग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम निर्मल होती है। ऐसे निर्मल शुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। कैसे? नाम उसके लिए चंद्रिका है, नाम तो वो है चंद्र, और चंद्र की किरणें जैसे फूल पर पड़ती है और उसे फूल खिल जाता है, ऐसे नाम रूपी चंद्र उससे किरण क्या हुई, नाम की शक्ति, नाम की शक्ति, और उस शक्ति के द्वारा अर्थात तो पहले वो शक्ति रुचि आसक्ति निष्ठा रुचि आसक्ति के रूप में ये उस पर देती जाएगी। तो पहले कुढ़ी, कुढ़ी से ईषत विकसी पुनी उसे थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, फिर थोड़ी सी खिल जाएगी, फिर थोड़ी सी, और पूर्ण चांदनी पाते ही पूरी तरह से खिल जाएगी। तो जितने प्रकार के शुभ हैं, शुभ माने यहाँ पर भाव, निष्ठा रुचि आसक्ति, और इसके भाव में भाव आता है, जिसके भाव का ही विकसित अवस्था का नाम प्रेम है, तो भाव अवस्था में ना समस्त शुभों का ये, तो उसको ये हो जाता है। उसके लिए नाम कैसा है? चंद्रिका को वितरण करने वाला ये नाम है उसका प्रभाव। यदि हम विचार करके देखें कि अच्छा हम जो नाम करते हैं हमारी भक्ति रूपी कुमुदिनी खिल रही है, न कि संसार के भोगों में ही हमारी रुचि बनी हुई है, खाने में पीने में पहनने में और अब सब चीज़ों में, अंगूठी में ताबीज में घड़ी में और जो विषय हो सकता है, किस में हमारी रुचि है? देखो दोनों तलवार एक म्यान में नहीं रहेगी, रजनी और
रूपी, रजनी
रजनी और रजनी सूर्य और रात एक म्यान में नहीं रह सकते, उसी प्रकार से दो तलवारें एक म्यान में नहीं रहेंगी, उसी प्रकार से माया और भक्ति एक साथ में नहीं रहेगी, फटेगी ही। इसलिए अब हमको देखना है जे कैसे हमारा ये स्वभाव फट रहा है कि हम कहाँ हैं। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु, विद्यावधु के ये नाम जीवन स्वरूप, विद्या किसको कहते हैं? कृष्ण को जिससे जाना जाए, विद्या भागवतावधि, जिसके द्वारा कृष्ण को जाना जाए, जीव तत्व को जान जाए, माया तत्व को जाना जाए, इसको कहते हैं विद्या। विद्या ये धन उपार्जन की विद्या को विद्या नहीं कहते, या जागतिक साइंस विज्ञान इत्यादि जो कहते हैं ये सब अनर्थ है, अविद्या। इसलिए विद्या वधु, ये भक्ति उनकी वधु है। विद्या ये भक्ति, पहले साधन भक्ति, भाव भक्ति, अंत में प्रेमा भक्ति। यही प्रेमा भक्ति अंत में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव हो करके, महाभय भाव, ये प्रेम बन करके राधिका का स्वरूप बनता है। यही कृष्ण की वधु है। नाम और नामी दोनों एक है ना? तो विद्या वधु, विद्या रूप वधु, जो अंत तक महाभाव की अवस्था में श्रीमती राधिका के रूप में जो ये है, लादिनी और संबित का भाव जब संधिनी के ऊपर में परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, पूर्ण संधिनी के ऊपर में पूर्ण संबित और लादिनी का प्रकाश होना ही आराधा भाव प्रकाश है। ये विद्या की वधु है। ये सब उनका एक किरण यदि हमारे हृदय में आए तो इसको कहते हैं भाव। तो विद्या वधु जीवन में ये कौन है? नाम है विद्या वधु जीवन। इसके बाद में आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम। यदि ऐसा नाम होगा ना, भावपूर्वक लिया हुआ जाया हुआ नाम, अनर्थग्रस्त लिया हुआ नाम नहीं, इन तीन चारों अवस्थाओं के बाद में लिया हुआ नाम, अब ये हुआ प्रतिक्षण में पद पद पर प्रेमामृता आनंदाम्बुदि वर्धनम, आनंद की अम्बुधि को बढ़ाता है। कृष्ण नाम ले रहे हैं, कुंजे श्रीमती राधिका कर्षती इति कृष्णः, हरे कृष्ण किया, और कुंजे कृष्णम हरती, ये हुआ हरे, और कृष्ण का क्या हुआ? कुंजे श्रीमती राधिका हरती, ये हुआ कृष्ण आकर्षती। ऐसे ही कितने इसके भाव गंभीर हैं, जिसका अंत नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसे सरस नाम को जगत में प्रकाश किया। पद पद पर इस नाम में जब कृष्ण को सब साक्षात ऐसा देखेगा और ऐसे भाव उसके आएंगे, तो उस नाम को लेकर के आनंद रूपी समुद्र में, अप्राकृत आनंद रूपी समुद्र में वो गोता लगाता रहेगा। उसको जगत से बातचीत करने की, किसी को पानी पिलाने की, किसी को कुछ करने की जागतिक उसको अब अवकाश नहीं रह जाएगा। हमारे लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर को इसी स्थिति में लाने के लिए ही उन्होंने कहा, अच्छा तो जाओ घर में पानी पिला लो। साधारण लोगों के समझ में ये बातें नहीं। आनंदाम बोधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधन। तो फिर पूर्ण अमृत का, पूर्ण अमृत क्या है? प्रेम रूपी अमृत, इसका सब समय आस्वादन करेगा, लीलाओं से एकदम इसको जोड़ देगा, और सब समय जैसे सनातन गोस्वामी किसी भी श्लोक को ले रहे हैं, बृहद भगवतामृत में देखते हो एक महात्मन शब्द का दिया, और महात्मन शब्द में क्या क्या नहीं भर दिया है? कला निधि और
कलावती,
इन दोनों शब्दों में कैसा भाव भरा। कृष्ण कला निधि है और राधिका जी कलावती है ना? ऐसा अर्थ हमने तो कभी, अभी हम लोगों का जीवन ही किया विभक्ति जीवन, किंतु हम लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया, किंतु सनातन गोस्वामी जी की कृपा से ये सब सुन, एक एक शब्द को कितना सुंदर लेकर के आस्वादन। भक्ति मनोहर ठाकुर जी नाम लेते लेते ऐसे ही ये सब चीज नहीं आया, ये करके कैसे तन्मय हो जाते हैं, कैसे सुंदर सुंदर व्याख्याएं करते हैं है? और प्रतिपद में आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादन, स्वागत करते हैं। नाम करते करते गोपियां मान कर दिया कृष्ण उनको कैसे ये कर रहे हैं, जयदेव जी का पद पढ़ रहे हैं, स्मर गरल अखंडनम मम शिरसि मंडनम धे ही पद फलम, ये सब का वो पाठ कर रहे हैं। उसी समय में वैसा ही कोई भाव आस्वादन करता हुआ नाम करे, तू कहाँ संसार कहाँ खाना पीना कहाँ कहाँ, इस तरह से आनंदाम बुद्ध हैं प्रणामृतास्वादन सर्वात्मा स्नबरम परम दिव्य, और उसको अंत में उस अमृत के सागर में ऐसे डुबो देता है जो कभी भी ऊपर में नहीं आता, उसी में ही डुबा रहता आनंद के संपन्नम, अर्थात माया का उसमें हवा नहीं कभी लग पाती, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि माया की हवा कभी लग जाए, संसार की कोई हवा उसमें लग सके, सब समय उसी में रह करके अर्थात यहाँ पर स्वरूप सिद्ध होकर के उसमें प्रवेश कर जाता है। ये है ऐसा ही ये हरिनाम जो है प्रभुपाद जी का विजय थे श्री कृष्ण संग, बस आज ही ऐसे कितने उपदेशों को हम लोग पढ़ें, न जाने कितने दिन हम लोगों के लग जाएंगे ऐसे उपदेश पढ़े, बस पंचाग्र उपदेश। कृष्ण 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 हरे।